एकत्र ज्ञान गोष्ठी आज के जरूरी विचारों का सार अब अपनी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है। ज्ञान गोष्ठी में आपका स्वागत है।
नमस्कार, आज हम दर्शन की एक ऐसी दुनिया में उतर रहे हैं जो हाँ थोड़ी गंभीर लग सकती है, थोड़ी उदास भी, लेकिन यकीन मानिए इसमें कुछ ऐसी बातें हैं जो जिंदगी को देखने का नजरिया बदल सकती हैं।
बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं जर्मन दार्शनिक आर्थर शोपेनहावर की और उनकी सबसे मशहूर और शायद सबसे चुनौतीपूर्ण किताब द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन, मतलब विश्व इच्छा और प्रस्तुति के रूप में।
और शायद श्रोता सोच रहे होंगे कि 19वीं सदी की ये भारी भरकम फिलॉसफी आज हमारे किस काम की।
सही सवाल है। देखिए, बात यह है कि शोपेनहावर उन सवालों से जूझते हैं जो आज भी हमें परेशान करते हैं, जैसे ये दुख क्यों है, हमारी इच्छाएं कभी शांत क्यों नहीं होती।
हाँ, या फिर क्यों कभी कभी बस एक गाना सुन के रूह को सुकून सा मिल जाता है। ये किताब सिर्फ क्या कहते हैं दिमागी कसरत नहीं है, ये असल में इंसानी जिंदगी की जो पहेली है उसे सुलझाने की गहरी कोशिश है। ये समझने की कि हमारी चाहतों, हमारे दुखों और हाँ थोड़ी सी खुशी के पीछे का सच क्या है।
तो चलिए इस गहरे समंदर में गोता लगाते हैं। पहले मिलते हैं इस सोच के पीछे के इंसान से, आर्थर शोपेनहावर। 1788 में जन्मे, 1860 तक रहे। दिलचस्प बात यह है कि वो एक अमीर व्यापारी परिवार से थे।
हाँ, अच्छी पढ़ाई लिखाई हुई, लेकिन वो अकेडमिक दुनिया से, यूनिवर्सिटीज से हमेशा थोड़ी दूरी बनाकर रखते थे। उन्हें अपने समय के जो मशहूर दार्शनिक थे, खासकर हेगल, उनका वो आशावाद पसंद नहीं था।
हाँ, वो मानते थे कि दुनिया इतनी सीधी, इतनी तर्कसंगत नहीं है।
बिल्कुल,
और शायद इसी दूरी ने उन्हें एक कह सकते हैं अनोखा नजरिया दिया।
वो भी जरूरी है।
उनकी सोच में ना तीन बड़े विचारों का संगम दिखता है। पहला तो इमैनुअल कांट।
हाँ, कांट का प्रभाव तो बहुत गहरा था उन पर।
असलियत क्या है, यानी थिंग इन इटसेल्फ, उसे हम जान ही नहीं सकते।
हाँ, लेकिन यही शोपेनहावर ने एक बड़ा डेयरिंग स्टेप लिया। उन्होंने कहा नहीं, हम उस असलियत को जान सकते हैं और वो असलियत है विल, WILL, एक अंधी अतार्किक इच्छा शक्ति। इस पर हम आगे बात करेंगे।
अच्छा,
और दूसरा प्रभाव?
दूसरा प्रभाव था प्लेटो का।
जी,
प्लेटो के जो आइडियाज या शाश्वत रूप थे, शोपेनहावर ने उन्हें अपनी सोच में जगह दी। वो मानते थे कि ये आइडियाज उस मूल विल के प्रकट होने के मतलब पैटर्न है,
हाँखे हैं।
और तीसरा, जो उस समय यूरोप में काफी अनोखी बात थी, वो था भारतीय दर्शन, उपनिषद, बौद्ध धर्म।
हाँ बिल्कुल, उनका इनमें गहरा इंटरेस्ट था। वो शायद पहले बड़े पश्चिमी दार्शनिक थे जिन्होंने माया यानी भ्रम और निर्वाण जैसी अवधारणाओं को इतनी गंभीरता से लिया और अपने सिस्टम में इंटीग्रेट किया।
तो कांट, प्लेटो और भारतीय विचार,
हाँ,
इन तीनों को मिलाकर उन्होंने एक बिल्कुल नई और कह सकते हैं व्यापक सोच तैयार की।
सही, हालांकि उनके जीते जी उन्हें ज्यादा पहचान नहीं मिली, लेकिन बाद में नीचे, फ्रॉयड, टॉल्स्टॉय जैसे बड़े विचारकों और कलाकारों पर उनका गहरा असर पड़ा।
चलिए अब किताब पर आते हैं, द वर्ल्ड एज विल एंड रिप्रेजेंटेशन।
हाँ,
ये कोई छोटी मोटी किताब तो है नहीं?
नहीं, बिल्कुल नहीं। ये पूरी हकीकत को समझाने का एक बहुत महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है और इसका लक्ष्य सिर्फ अकेडमिक नहीं है, ये असल में इंसानी दुख की जड़ तक पहुंचना और उससे शायद मुक्ति का रास्ता खोजना है।
तो इसका सेंट्रल आइडिया क्या है, सार क्या है?
इसका सबसे मुख्य विचार ये है कि हकीकत के दो चेहरे हैं, एक ही सिक्के के दो पहलू समझ लीजिए। पहला चेहरा है दुनिया प्रस्तुति के रूप में, वर्ल्ड एज रिप्रेजेंटेशन,
यानी वो दुनिया जो हमें दिखती है।
हाँ, जो हमें अपनी इंद्रियों और दिमाग से समझ आती है, चीजें, लोग, जगहें, समय, कारण प्रभाव का जाल, ये सब। शोपेनहावर कहते हैं ये दुनिया असल में हमारे मन की बनाई हुई है। जैसे अगर हम रंगीन चश्मा पहन लें तो सब रंगीन दिखेगा।
अच्छा, तो मतलब दुनिया जैसी दिखती है वैसी है नहीं, हमारा मन उसे वैसा बना रहा है।
बिल्कुल, ये हमारे दिमागी ढांचे, मतलब स्थान, समय, कार्य कारण, इन सब का नतीजा है। लेकिन फिर सवाल उठता है कि इस प्रस्तुति, इस पर्दे के पीछे क्या है?
हाँ, असली चीज क्या है?
यही आता है हकीकत का दूसरा चेहरा, दुनिया इच्छा शक्ति के रूप में, वर्ल्ड एज विल। ये है असली चीज, पर्दे के पीछे की हकीकत।
और ये विल या इच्छा शक्ति, ये क्या है? कोई दैवीय शक्ति, कोई भगवान?
नहीं, शोपेनहावर के अनुसार ये कोई समझदार, कोई प्लान बनाने वाली शक्ति नहीं है। ये एक अंधी, अतार्किक, कभी न संतुष्ट होने वाली, लगातार कोशिश करती हुई ताकत है।
अंधी ताकत?
हाँ, सोचिए एक ऐसा भूखा इंजन जो बिना किसी ड्राइवर या मंजिल के पूरी कायनात को धकेल रहा है, पत्थर के गिरने से लेकर पौधे के उगने और हमारी अपनी गहरी इच्छाओं तक। सब कुछ, हर चीज उसी एक विल का रूप है, वो बस कोशिश कर रही है बिना किसी अंतिम मकसद के।
ओह, ये तो काफी निराशाजनक तस्वीर लगती है।
तो किताब हमें कहाँ ले जाती है फिर?
ये किताब एक यात्रा की तरह है। ये शुरू होती है ज्ञान के सवालों से, हम दुनिया को कैसे जानते हैं, फिर जाती है असलियत की प्रकृति पर, ये विल क्या है, फिर कला और सुंदरता की भूमिका क्या है, और आखिर में नैतिकता और दुख से मुक्ति के सवालों पर।
तो ये सब कुछ कवर करती है, साइंस, आर्ट, मॉरालिटी। हाँ, वो कोशिश करते हैं सबको एक ही फ्रेमवर्क में समझने की। और दिलचस्प बात ये है कि किताब में चैप्टर्स नहीं है बल्कि 4 पुस्तकें हैं, जो बारी बारी से दुनिया को कभी प्रस्तुति के नजरिए से देखती हैं, तो कभी इच्छा शक्ति के।
ठीक है, तो पहली पुस्तक से शुरू करते हैं। पुस्तक 1, प्रतिनिधित्व के रूप में विश्व, पहला पहलू। इसकी शुरुआत ही उस मशहूर लाइन से होती है ना, दुनिया मेरा प्रतिनिधित्व है।
हाँ, दाई वेल्ट इस माइन फॉर्स्टेलो। इसका सीधा मतलब है कि हम जो कुछ भी जानते हैं, अनुभव करते हैं, ये माइक, ये आवाज, ये विचार, ये सब सीधे बाहर से जस का तस नहीं आ रहे हैं। ये हमारे मन की संरचनाओं, स्थान, समय, कार्यकारण, इनसे छनकर हमारे लिए एक प्रस्तुति के रूप में तैयार होते हैं। दुनिया हमारे अनुभव पर निर्भर करती है, तो पहला कदम ये मानना है कि हमारी ये जानी पहचानी दुनिया असल में व्यक्तिनिष्ठ है, सब्जेक्टिव है।
ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये सब मेरा बनाया हुआ है, तो फिर इसके पीछे की असलियत क्या है।
बिल्कुल, और यहीं से हम आते हैं पुस्तक 2, इच्छा शक्ति के रूप में विश्व, पहला पहलू।
ठीक है, अब कांट ने तो कहा था कि असली चीज को जाना नहीं जा सकता, तो शोपेनहावर उस तक कैसे पहुंचते हैं, ये बड़ा सवाल है।
हाँ, और यही शोपेनहावर का सबसे बड़ा और शायद सबसे बोल्ड दावा है। वो कहते हैं, हाँ, बाहर की दुनिया की असलियत तक हम सीधे नहीं पहुंच सकते, लेकिन हमारे पास एक खिड़की है उस असलियत तक झांकने की।
एक खिड़की? कौन सी?
हमारा अपना शरीर। देखिए, हम अपने शरीर को बाहर से एक वस्तु की तरह देख सकते हैं, है ना, ये एक प्रस्तुति है, लेकिन हमें उसका अंदरूनी अनुभव भी तो होता है।
मतलब?
मतलब हमारी भूख, प्यास, इच्छाएं, दर्द, खुशी, हमारी कोशिशें, ये जो अंदरूनी महसूस करना है, हमारी चाहत, हमारा एफर्ट, शोपेनहावर कहते हैं यही वो असलियत है, यही वो विल है।
ओ, तो अपने अंदर झांक कर हम सीधे उस असलियत, उस विल को महसूस कर सकते हैं,
शोपेनहावर का यही मानना है। और फिर वो एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं, लीप लेते हैं। वो कहते हैं कि अगर मेरे शरीर के अंदरूनी सच का नाम विल है, तो लॉजिकली बाकी सारी दुनिया, हर पत्थर, हर पेड़, हर जानवर के पीछे की असलियत भी यही अकेली अंधी अतार्किक विल ही होगी।
मतलब एक ही ताकत है जो सब में है।
हाँ, एक ही ताकत है जो अलग अलग रूपों में प्रकट हो रही है, इसे वो विल का वस्तुनिष्ठीकरण, ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ द विल कहते हैं। कैसे ये एक शक्ति प्रकृति में अलग अलग लेवल्स पर, ग्रेविटी से लेकर इंसान की कॉम्प्लेक्स इच्छाओं तक, खुद को जाहिर करती है।
लेकिन ये थोड़ा अजीब नहीं लगता है कि मेरे अंदर की ये चाहत, ये इच्छा, यही पूरी कायनात के पीछे की ताकत है, ये कुछ ज्यादा नहीं हो गया?
देखिए, ये सवाल बिल्कुल जायज है और कई लोगों ने उठाया भी है। शोपेनहावर का तर्क ये था कि शरीर ही एकमात्र चीज है जिसे हम दो तरह से जानते हैं, बाहर से ऑब्जेक्ट की तरह और अंदर से सीधे अनुभव से। इसीलिए ये अंदरूनी अनुभव ही असलियत तक पहुंचने का एकमात्र सीधा रास्ता है। हाँ, ये उनके दर्शन का सबसे विवादास्पद लेकिन सबसे केंद्रीय हिस्सा है, ये मानना कि सब कुछ एक अंधी दौड़ का हिस्सा है।
ठीक है, मान लिया कि सब कुछ इस अंधी विल का खेल है और ये दुख लाती है, तो क्या कोई राहत है, कहीं कोई ब्रेक है सबसे? यही शायद पुस्तक 3, प्रतिनिधित्व के रूप में विश्व, दूसरा पहलू, सौंदर्य शास्त्र काम आती है।
बिल्कुल, यहाँ शोपेनहावर वापस प्रस्तुति की दुनिया में लौटते हैं, लेकिन एक खास तरीके से। सामान्य जीवन में हम चीजों को कैसे देखते हैं, अपनी जरूरत और इच्छा के हिसाब से, है ना, ये मेरे काम का है या नहीं, मुझे ये चाहिए या नहीं चाहिए।
हाँ, मतलब फायदे नुकसान से।
हाँ, लेकिन जब हम सौंदर्य परक चिंतन, एस्थेटिक कंटेम्पलेशन में होते हैं, यानी किसी चीज को बस उसकी सुंदरता के लिए देखते हैं, बिना किसी स्वार्थ के, बिना ये सोचे कि इससे मेरा क्या फायदा होगा, तब कुछ जादुई होता है।
क्या जादुई होता है?
उस पल के लिए हम अपनी इच्छाओं के, अपनी विल के गुलाम नहीं रहते, हम ज्ञान के शुद्ध इच्छा रहित विषय बन जाते हैं।
इच्छा रहित?
हाँ, यहाँ शोपेनहावर प्लेटो के आइडियाज का इस्तेमाल करते हैं। ये आइडियाज उस अकेली विल और अनगिनत चीजों के बीच के शाश्वत पैटर्न है, जैसे फूलपन का आइडिया या इंसानियत का आइडिया। जब हम किसी कलाकृति या प्रकृति के नज़ारे में पूरी तरह खो जाते हैं, तो हम उस चीज में मौजूद उस शाश्वत आइडिया को ग्रहण करते हैं, और इस प्रक्रिया में हम अपनी व्यक्तिगत इच्छाओं और उनसे जुड़े दुख से थोड़ी दूर से आजाद हो जाते हैं।
अच्छा, तो कला और सुंदरता एक तरह की अस्थायी दवा है इस विल के दर्द से, एक एस्केप।
हाँ, कह सकते हैं, एक छोटी सी मगर बहुत जरूरी छुट्टी। यही वजह है कि आर्ट, म्यूजिक, नेचर हमें इतना सुकून देते हैं। वो हमें हमारी रोजमर्रा की इच्छाओं की दौड़ से बाहर निकालते हैं। शोपेनहावर तो कलाओं का एक क्रम भी बताते हैं, जिसमें आर्किटेक्चर सबसे नीचे है और संगीत
सबसे ऊपर। क्यों?
क्योंकि शोपेनहावर मानते हैं कि संगीत प्लेटो के आइडियाज की भी नकल नहीं करता, वो किसी चीज के पैटर्न को नहीं दिखाता, वो सीधे सीधे उस विल, उस अंदरूनी कश्मकश, उस खुशी और दुख की लहरों की ही डायरेक्ट अभिव्यक्ति है, नकल है।
ओह, इसीलिए वो इतना असर करता है।
हाँ, वो सीधे रूह से बात करता है, बिना किसी बीच के माध्यम के।
ये बात तो महसूस होती है, कुछ गाने सुनकर लगता है जैसे वो सीधे दिल की बात कह रहे हैं, किसी तस्वीर या कहानी से भी ज्यादा गहराई से।
अच्छा, अब आते हैं आखिरी पड़ाव पर, पुस्तक 4, इच्छा शक्ति के रूप में विश्व, दूसरा पहलू, नैतिकता। यहाँ क्या होता है?
यहाँ शोपेनहावर अपने दर्शन के नैतिक नतीजों पर आते हैं, और यही उनका जो प्रसिद्ध निराशावाद है वो खुलकर सामने आता है। वो कहते हैं, क्योंकि जीवन इस अतृप्त विल का खेल है, इसलिए जीवन का सार ही दुख है, सफरिंग।
सार ही दुख है।
हाँ,
कोई भी खुशी या संतुष्टि बस अस्थायी होती है। एक इच्छा पूरी होती है तो या तो बोरियत घेर लेती है, या फिर कोई नई इच्छा पैदा हो जाती है।
यही वो उनकी मशहूर कहावत आती है ना, कि जीवन दर्द और बोरियत के बीच पेंडुलम की तरह झूलता है।
बिल्कुल।
तो फिर सवाल उठता है कि नैतिकता की गुंजाइश कहाँ है, अगर सब कुछ स्वार्थी विल का ही खेल है।
हाँ, तो फिर अच्छा बुरा क्या?
सामान्य तौर पर हम जीवन संकल्प की पुष्टि करते हैं, मतलब अपनी इच्छाओं को पूरा करने और जीने में लगे रहते हैं, खुद को दूसरों से बेहतर साबित करने में। लेकिन शोपेनहावर कहते हैं, सच्ची नैतिकता की शुरुआत होती है करुणा से, मिडलाइट से,
कंपैशन से।
करुणा? वो कैसे?
करुणा तब पैदा होती है जब हम ये गहराई से महसूस करते हैं कि अलग अलग इंसानों के बीच का जो फासला है, जो अलगाव है, वो सिर्फ एक भ्रम है, जिसे वो भारतीय दर्शन से उधार लेकर माया या प्रिंसिपियम इंडिविजुअलाइजेशनिस व्यक्तित्व का सिद्धांत कहते हैं।
मतलब ये मानना कि हम सब अलग अलग हैं, ये भ्रम है।
हाँ, असल में हम सब उसी एक पीड़ित विल के अलग अलग चेहरे हैं, एक ही ताकत हम सब में दुख झेल रही है। जब हम ये समझ जाते हैं तो दूसरे का दुख देखकर हमें सच में पीड़ा होती है, क्योंकि वो हमारी ही पीड़ा का एक रूप है।
तो क्या करुणा ही दुख से निकलने का रास्ता है, फाइनल सोल्यूशन?
करुणा एक बहुत अहम कदम है, लेकिन शोपेनहावर के अनुसार अंतिम मुक्ति इससे भी आगे है, वो है जीवन संकल्प के निषेध में।
जीवन संकल्प का निषेध मतलब?
ये एक ऐसी अवस्था है जहां इंसान ज्ञान और पीड़ा के अनुभव से गुजरकर अपने अंदर की जीने की इच्छा का ही दमन करने लगता है, उसे शांत करने लगता है। इसमें तपस्या, इच्छाओं का त्याग शामिल है। ये बौद्ध निर्वाण जैसी परम शांति की स्थिति की ओर ले जाता है।
तो ये निर्वाण जैसा है?
हाँ, काफी मिलता जुलता है। और शोपेनहावर जोर देकर कहते हैं कि ये आत्महत्या से बिल्कुल अलग है। आत्महत्या तो जीने की इच्छा की हार है, जब दुख बर्दाश्त से बाहर हो जाए, जबकि ये निषेध जीने की इच्छा से ही परे चले जाना है, उसे शांत कर देना है।
वाह, ये वाकई एक बहुत गहरा और सोचने पर मजबूर करने वाला नजरिया है। चलिए कुछ मुख्य बातों को जल्दी से समेटते हैं। पहला टेक अवे मेरे लिए, हकीकत दोहरी है, एक वो जो दिखती है प्रस्तुति, और एक वो जो असल में है, अंधी इच्छा शक्ति या विल।
दूसरा टेक अवे, हमारी बुद्धि, हमारा तर्क असल में इस अंधी इच्छा शक्ति के गुलाम है। हम सोचते हैं हम लॉजिक से चल रहे हैं, पर अक्सर हमारी इच्छाएं ही हमें चला रही होती हैं। ये बात फ्राइड के विचारों की याद दिलाती है।
तीसरा टेक अवे, निराशावाद। दुख जीवन का हिस्सा नहीं बल्कि उसका सार है, क्योंकि इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती। दर्द और बोरियत का पेंडुलम, ये आज भी कितना सच लगता है ना? खासकर जब हम चीजों के पीछे भागते हैं और पाते हैं कि खुशी तो बस कुछ पल की थी।
लेकिन इसी निराशा के बीच चौथा टेक अवे, कला और सौंदर्य, ये हमें इस इच्छा चक्र से अस्थाई राहत देते हैं। संगीत सुनना, कोई खूबसूरत नज़ारा देखना, ये सिर्फ टाइम पास नहीं बल्कि एक तरह की थेरेपी है। ये हमें स्वार्थ से ऊपर उठने का मौका देता है।
और पांचवी टेक अवे, सच्ची नैतिकता, वो स्वार्थ से नहीं करुणा से आती है। ये समझना कि हम सब जुड़े हुए हैं, सब एक ही दुख झेल रहे हैं, ये माया के पर्दे को हटाने जैसा है। शायद यही सोच हमें दूसरों के प्रति ज्यादा हमदर्द बना सकती है, खासकर मुश्किल वक्त में।
और छठी टेक अवे, मुक्ति का रास्ता वो इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि उनसे ऊपर उठने, उनका त्याग करने में है। तपस्या और निषेध के जरिए जो हमें निर्वाण जैसी शांति तक ले जा सकता है, ये पूर्वी दर्शन का गहरा असर दिखाता है उनके काम पर।
इस किताब में ऐसी कई लाइनें हैं जो दिमाग में अटक जाती हैं, जैसे वो पहली लाइन ही, दुनिया मेरा प्रतिनिधित्व है, दी वेल्ट इस्त माइन ए फोर्स टीलुंग। ये बार बार याद दिलाती है कि हमारी हकीकत कितनी व्यक्तिपरक है, कितनी हमारे नजरिए पर निर्भर है।
और वो पेंडुलम वाली बात, जीवन दर्द और बोरियत के बीच पेंडुलम की तरह पीछे और आगे झूलता है। ये जिंदगी के उतार चढ़ाव और कभी न खत्म होने वाली चाहतों का कितना मार्मिक वर्णन है।
संगीत के बारे में उनकी बात मुझे बहुत पसंद आई। संगीत संपूर्ण इच्छा शक्ति का उतना ही प्रत्यक्ष वस्तुनिष्ठीकरण और प्रतिलिपि है जितना कि दुनिया स्वयं है। संगीत अन्य कलाओं की तरह विचारों की प्रतिलिपि नहीं है बल्कि स्वयं इच्छा शक्ति की प्रतिलिपि है। ये बताता है कि क्यों संगीत हमें इतनी गहराई से छूता है, भाषा और कल्चर से परे।
और करुणा पर यह विचार कितना गहरा है, देखिए, उत्पीड़क और उत्पीड़ित एक है। पहला यह सोचकर गलती करता है कि वह दुख में भागीदार नहीं है, दूसरा यह सोचकर कि वह अपराध में भागीदार नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि हम सब एक ही नाव में सवार हैं, दूसरों का दर्द कहीं न कहीं हमारा भी है।
अब बड़ा सवाल, ये सब ज्ञान, ये फिलॉसफी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे काम आ सकती है? ये थोड़ी भारी लगती है।
देह भारी तो है लेकिन काम की भी है। सबसे पहले तो ये हमें खुद को समझने में मदद कर सकती है। हम क्यों बार बार वही गलतियां करते हैं, क्यों हम उन चीजों के पीछे भागते हैं जिनसे हमें आखिर में निराशा ही मिलती है। शोपेनहावर की नज़र से देखें तो शायद हम अपनी इच्छाओं के खेल को, अपनी विल की ताकत को बेहतर समझ पाएंगे।
हाँ, और वो हेडोनिक ट्रेडमिल वाली बात भी कि खुशी मिलते ही हम उसके आदी है जाते हैं और फिर और ज्यादा चाहते हैं।
शायद शोपेनहावर हमें ये याद दिलाते हैं कि असली शांति बाहरी चीजों में नहीं बल्कि शायद अंदरूनी ठहराव में है। अपनी उम्मीदों को थोड़ा काबू में रखने की जरूरत है।
बिल्कुल। दूसरा, कला और प्रकृति की अहमियत को सच में समझना। अगली बार जब कोई गाना सुने या किसी खूबसूरत जगह पर जाएं, तो उसे सिर्फ मनोरंजन ना समझें। ये वो पल हैं जब आप अपनी इच्छाओं के बोझ से थोड़ी देर के लिए मुक्त हो सकते हैं।
इसे सचेत रूप से इस्तेमाल करें, एक थेरेपी की तरह।
और करुणा, वो कैसे काम आ सकती है?
अगर हम ये माने कि सामने वाला भी उसी अंधी विल के हाथों मजबूर है, उसी दुख से गुजर रहा है जिससे हम गुजरते हैं, तो शायद हम दूसरों को कम जज करेंगे।
हाँ, और ज्यादा सहानुभूति रखेंगे। ऑफिस की पॉलिटिक्स हो या पड़ोसियों से झगड़ा, शायद ये नजरिया हमें थोड़ा शांत रहने में मदद करे, कम रिएक्टिव बनाए।
बिल्कुल। और आखिर में एक तरह का स्वस्थ निराशावाद अपनाने में, ये मान लेना कि जिंदगी में मुश्किलें आएंगी, दुख होगा, शायद हमें ज्यादा मजबूत और लचीला बना सकता है। ये हमें झूठी अवास्तविक उम्मीदों से बचाता है।
तो कुल मिलाकर शोपेनहावर हमें हकीकत और इंसान होने के मतलब को एक बिल्कुल अलग, थोड़ी हाँ चौंकाने वाली रोशनी में दिखाते हैं। ये आसान रास्ता नहीं है पर सोचने के लिए बहुत कुछ देता है।
मेरे लिए सबसे दिलचस्प बात यह है कि कैसे उन्होंने पश्चिमी तर्क और पूर्वी ज्ञान को इतनी खूबसूरती से जोड़ा, और उनका करुणा पर जोर देना, ये मानना कि हम सब असल में एक हैं, ये आज की इतनी बंटी हुई दुनिया में शायद और भी ज्यादा जरूरी हो गया है।
हाँ, उनका नजरिया निराशाजनक लग सकता है पर शायद इसी निराशा को स्वीकार करने में ही शांति का पहला कदम छिपा हो।
क्या ये संभव है कि हमारी इच्छाओं के पीछे लगातार भागना ही हमारे दुख का असली कारण है और असली शांति उनसे मुंह मोड़ने में, उनसे ऊपर उठने में है? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सब सोचते रह सकते हैं।
मिलेंगे अगले अंक में एक और विश्व प्रसिद्ध व्यक्तित्व, एक और किताब और एक ऐसे नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।